आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
डॉक्टर साहब, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
हेलो अमित, हाउ आर यू?
डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और मोनैश, जो कि ऑस्ट्रेलिया की दो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने भारत में लगभग 3 या 4 ऐसे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई और कानपुर शामिल हैं, जिनके साथ मिलकर एक नई परियोजना पर काम करना शुरू किया है। क्या है ये परियोजना?
एक्चुअली ये बायलैटरल रिलेशनशिप है साइंटिफिक में, स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड बोलते हैं। ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चल रहा है। 10 साल से ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी और ये बेसिकली ये जो राउंड है, ये राउंड 10th राउंड है। ये राउंड के अंदर बेसिकली हमको जो फंडिंग मिली है ये क्लोज टू $1 million है और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट इज गोना बी इन्वेस्टिंग इट टू डेवलप सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइटिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको, ओलेड बेस, और ऑल्सो उसके वजह से एनर्जी कंजम्पशन लेस रहेगा।
डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इस तरीके की जो परियोजनाएं हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया को और नजदीक लेकर आ सकती हैं?
ओ डेफिनेटली, बिकॉज ये द साइंटिफिक कोलैबोरेटिव वर्क है मेनली। एक्चुअली ये कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रहा है तो इसमें डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है इंडिया की एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया के साइड से, तो इसमें डेफिनेटली मोर कोलैबोरेटिव वर्क होगा और इसमें डेफिनेटली कोलैबोरेशन स्ट्रांग होंगे।
जहां तक बात करें रिसर्च की, शोध की, आप काफी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में शोध कर रहे हैं, ओरिजिनली आप मुंबई से हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि मुंबई से ब्रिस्बेन कैसे आना हुआ और आप क्या काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में?
एक्चुअली मैंने मेरी PhD मुंबई यूनिवर्सिटी से की, काफी आई थिंक अभी काफी साल हो गए। उसके बाद मैं कैलिफोर्निया में चला गया, ऑलमोस्ट 4 साल मैं था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज ए पोस्ट डॉक्टरल स्टाफ। वहां से मैंने एक्चुअली वन ऑफ द लीडर जिसको नोबेल प्राइज मिला था, प्रोफेसर एलन हीगर, उसके अंडर में मैंने रिसर्च किया। उसके बाद में फिर मुझे इधर मैं ब्रिस्बेन में रफली 2010 में इधर आ गया एज ए एकेडमिक स्टाफ। मैं इस एरिया में अभी ऑलमोस्ट मुझे 20 साल हो गया आई एम वर्किंग इन दिस एरिया।
तो जो आपका अनुभव रहा है ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च के क्षेत्र में वो कैसा रहा?
या आई थिंक इधर का ऑस्ट्रेलिया का भी रिसर्च काफी स्ट्रांग है बिकॉज मैं US में भी काम कर चुका हूँ और आई कैन सी दैट इधर डेवलपमेंट काफी स्ट्रांग है। R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है
जी।
तो इसमें डेफिनेटली वी आर वेरी कॉम्पिटेटिव कम्पेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड।
आपको फिर से वापस लेकर आता हूँ उसी सवाल पे कि आपने यहाँ भी काम किया है, अमेरिका में काम किया और भारत में आपने अपनी PhD की है और अब आप भारत के साथ ही एक नए MOU के थ्रू और नए स्ट्रेटेजिक फंड के थ्रू काम करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज हैं, जिन चार इंस्टीट्यूट्स के हमने नाम लिए हैं जो साइंटिफिक रिसर्च में है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं आज की डेट पर?
हाँ डेफिनेटली, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी है उधर ऑलरेडी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, इंडियन साइंटिस्ट भी काफी एक्सपीरियंस है उसमें, एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज भी रहेंगे। तो क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है ये काफी इंटरडिसिप्लिनरी है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए एक पर्सन नहीं काम कर सकता है, इसके लिए काफी लोगों की जरूरत है और इसमें डेफिनेटली इट विल हेल्प to build a strong relationship, also it will help to build some kind of real product.
डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है कि भारत में जो रिसर्च रही है, जो शोध रहा है, वो बहुत थियोरेटिकली ओरिएंटेड रहा है, उसका इंडस्ट्री पर क्या लागत आती है या क्या इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको नहीं रहता। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जहां तक बात करूं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, यहां पर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, फंडामेंटल रिसर्च को किस तरीके से कमर्शियल बनाया जाए, तो क्या आप लोग इसमें सहयोग करेंगे भारतीय रिसर्चर्स का?
हाँ डेफिनेटली, इसमें क्योंकि इंडियन साइड काफी स्ट्रांग होती है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में, अनफॉर्चुनेटली एक्सपेरिमेंटल नॉलेज उनके पास काफी लिमिटेड है और एक्चुअली फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन साइड वी विल डेफिनेटली हेल्प देम टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन डेवलप एंड वी कैन ऑल्सो वर्क कोलैबोरेटिवली। सो बेसिकली उसमें क्योंकि ये जो एरिया के अंदर थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है तो उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज आएंगी वो डेफिनेटली, और इंडस्ट्रीज भी काफी इन्वॉल्व है इसके अंदर इनकेस इफ वी आर सक्सेसफुल इंडस्ट्री इज वेरी कीन टू लर्न फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी।
जी, आपने शुरू में बताया था हमें कि जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट है ये न्यू लाइटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो क्या इसका दूरवर्ती क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और भारत में इस्तेमाल किया जाएगा?
या एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग जो लाइटिंग टेक्नोलॉजी, इफ यू सी द इवोल्यूशन ऑफ लाइटिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ओरिजिनली अगर इंडिया में देखे जाए तो फिलामेंट लैम्प जो इनकैंडेसेंट लैम्प बोलते हैं वो यूज होता है, और उसके अंदर वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी काफी कंज्यूम कर लेता हो। उसके में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसमें ओनली 10% जो इलेक्ट्रिसिटी वो लाइट में प्रोड्यूस करता है, और एक्चुअली उसके वजह से काफी वो वेस्टेज हो जाती है पावर की। तो एक्चुअली हम लोग एक नए टाइप की टेक्नोलॉजी है जिसको ऑर्गेनिक बेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। उसमें एक्चुअली वो लो कॉस्ट होता है, और अगेन उसके अंदर वो उसका एफिशिएंसी है, ऑलमोस्ट इंटरनल एफिशिएंसी 100% है। तो इसलिए वो एक्चुअली पावर इलेक्ट्रिसिटी भी लो कंज्यूम करेंगे, इट इज ऑल्सो लो टू मैन्युफैक्चर।
डॉक्टर नामदास, SBS हिंदी में बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।